प्रस्तुत है आज का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। लिबरल सेनेटर जेसिंटा प्राइस पर पिछले हफ्ते की गई अपनी टिप्पणी के बाद भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय, जिसमें नेशनल पार्टी के उनके सहयोगी भी शामिल हैं, से माफी मांगने का लगातार दबाव बना हुआ है। आपको बता दूं कि सेनेटर प्राइस ने फेडरल सरकार पर अपनी राजनीतिक संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए भारतीय प्रवास को प्राथमिकता देने का आरोप लगाने के बाद माफी मांगने से पहले ही इनकार कर दिया है। वहीं शोक संतप्त लोगों ने एक अनुभवी पुलिस अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनकी सेवानिवृत्ति से कुछ ही दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जासूसी प्रमुख वरिष्ठ कांस्टेबल नील थॉम्सन को मेलबर्न के दक्षिण पूर्व में स्थित विक्टोरियन पुलिस अकादमी में आयोजित उनकी अंतिम संस्कार में पूरे सम्मान के साथ विदाई दी गई। वहीं हाल ही में मिनिस्टर फॉर इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियंस मैलरांडरी मैकार्थी ने कैंप सॉवरेनिटी का दौरा किया है, जो कि एक आदिवासी पवित्र स्थल है, जिस पर पिछले हफ्ते आव्रजन विरोधी प्रदर्शनकारियों, जिनमें कुछ नियोनाजी भी शामिल थे, ने हमला किया था। मिनिस्टर ने कहा है कि वे सप्ताहांत में कैंप में शामिल होने के लिए आभारी हैं, जहां लोग काले कपड़े पहने पुरुषों के एक समूह द्वारा किए गए हमले के बाद सदमे में हैं और पूरा इलाका हाई अलर्ट पर है। आपको बता दूं कि एक नए राष्ट्रीय कोड के तहत जिन एयरलाइन यात्रियों की उड़ान रद्द या विलंबित होती है, उन्हें एयरलाइन द्वारा गारंटीकृत रिफंड प्राप्त हो सकता है। एविएशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्कीम यानी विमानन उपभोक्ता संरक्षण योजना के लिए आज से सार्वजनिक परामर्श शुरू हो गया है, ताकि निर्धारित समय पर उड़ान न भरने पर यात्रियों के लिए मानकों यानी स्टैंडर्ड्स का राष्ट्रीयकरण किया जा सके। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास और इसराइल के बीच युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के प्रयास में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना जताई है। आपको बता दूं कि ये ऐसे समय में हो रहा है, जब इसराइल ने अकालग्रस्त गाजा शहर पर अपना हमला तेज कर दिया है और ऊंची इमारतों को ध्वस्त कर लोग भागने पर मजबूर हैं। बात करें विक्टोरिया की, तो विक्टोरिया पुलिस को मेलबर्न के बाहरी इलाके में 12 और 15 साल के दो लड़कों की चाकू घोंपकर हत्या की घटना में युवा अपराध गिरोह यानी यूथ क्राइम गैंग्स के होने की आशंका है। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि ये लड़के किसी गिरोह के सदस्य नहीं थे और हो सकता है कि उन्हें गलती से निशाना बनाया गया हो। वहीं जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा का कहना है कि उन्होंने कल यानी 7 सितंबर को अपने इस्तीफे की घोषणा करने से पहले अमेरिका के साथ टैरिफ समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार किया। आपको बता दूं कि इशिबा एक साल से भी कम समय पहले सत्ता में आए थे और एक ऐसे गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे, जिसने कि महंगाई को लेकर मतदाताओं के गुस्से के बीच संसद के दोनों सदनों के चुनाव में अपना बहुमत खो दिया। इस हार के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब उनका कहना है कि उन्हें लगता है उनके जाने का समय आ गया है। बात करें भारत की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की सघन जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में मान्यता व प्रवेश की जांच की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जनपद में विशेष जाँच टीम बनाई जा रही है। टीम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग के लोग भी शामिल होंगे। आपको बता दूं कि हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कि गैर मान्यता संचालित संस्थानों की जांच का अनुरोध किया गया था। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।